गाथा में आप सुन रहे हैं ममता कालिया की कहानी आखिरी लिबास। हम लेखकों की मस्ती और पस्ती, खप्त और खाम ख्याली के क्या कहने। बैंक का खाता कितना भी खुश्को, दिल दिमाग में पड़े कहानी कविता के खाके अपना असली खजाना लगते हैं, उसी पर अपना दम खम है। कभी कभी कोई छोटा मोटा इनाम पा जाते हैं। जब से कोरोना ने हमें घर में कैद किया है, इनाम देने वाले दरिया दिल हो गए हैं। रोज ही लेखकों के किसी न किसी जत्थे को इनाम घोषित होता है। आयोजक आपको ऑनलाइन सम्मानित कर देता है, ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र भेज देता है, एक घंटे भर का लाइव शो करवा लेता है और किसी की कोई भाग दौड़ नहीं होती। लेखक की माथा पच्ची के बारे में सोचने की किसे पड़ी है, वो तो वैसे भी निठल्ला है। क्या हुआ अगर खाट की जगह घंटा भर कुर्सी पर बैठकर बोल दिया। महामारी के पहले कुछ ऐसे पुरस्कार जरूर मिलते थे जिनमें फूल माला, श्रीफल और 5-10 हजार की नगण्य राशि होती। हम लेखक उसी से बहल जाते, इसी बहाने किसी आसपास के शहर में घूमना हो जाता। ऐसे ही एक मौके पर कमलेश्वर स्मृति सम्मान की घोषणा हुई। समग्र साहित्य के लिए मुझे 10 हजार का और युवा कविता के लिए विवेक गौतम को 5 हजार का। आने जाने की व्यवस्था टैक्सी से। ये पुरस्कार बरेली में मिलना था, ना कहने का कोई सवाल नहीं था। घूमने की शौकीन मैं, कमलेश्वर जी की स्मृति में सम्मान, जिनकी न जाने कितनी यादें सन 1965 से 2006 तक की मेरे अंदर भरी हुई थी। ऊपर से साथ में इतने सारे सहलेखकों का सफर में हम सफर होना, विभूति नारायण राय, गंगा प्रसाद विमल, उपेंद्र कुमार, विवेक गौतम और मैं। ठंड का मौसम था, दिल्ली से बरेली जाने वाला रास्ता साफ सुंदर और सीधा। सड़क पर एक जगह अमरूदों से लदा ठेला खड़ा था। अमरूदों की खुशबू कार की खिड़की के शीशों से भी अंदर आ रही थी। विवेक ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, जरा अमरूद ले लें। गाड़ी रुकी। ठेले के पास ही एक मोची बैठा ग्राहक का इंतजार कर रहा था। चौड़ी सड़क थी। सड़क के पार मैंने देखा एक दुकान का नामपट लिखा हुआ था, आखिरी लिबास। मन में भय और आश्चर्य दोनों उठे। ये कैसा नाम है दुकान का? फिर देखा तो दुकान से सटा हुआ कब्रिस्तान भी दिख गया। नाम का आशय समझ आ गया। इस बीच विवेक गौतम काफी अमरूद खरीद कर वापस आ गए और गाड़ी चल पड़ी। सबने अमरूद में बुड़का मारा। जब काफी दूर आगे बढ़ गए, यकायक विवेक गौतम को याद आया, अरे मेरा मोबाइल। उन्होंने अपनी पैंट की, जैकेट की जेबें टटोली, सब देखा, कहीं मोबाइल फोन नहीं मिला। विवेक का चेहरा फक पड़ गया। उसने कहा, इतने का तो इनाम भी नहीं मिल रहा जितने का मोबाइल फोन गुम हो गया। हम सब फिक्रमंद हो गए। मोबाइल का खोना सिर्फ एक फोन का खोना नहीं होता, उसमें हमारे सारे संपर्क, संबंध, सूचनाएं, आंकड़े और डायरी दर्ज होती है। उसमें हमारा फोटो एल्बम, गैलरी और स्मृतियां भी महफूज होती हैं। नया फोन लेकर भी ये सब उसमें दोबारा मिलनी मुश्किल है। हम सब ने बारी बारी से विवेक के मोबाइल नंबर पर फोन लगाया कि शायद कोई उठा ले। घंटी जाती रही, किसी ने उठाने की गलती नहीं की। तय किया गया कि गाड़ी को वापस अमरूद वाले ठेले के पास ले जाया जाए। हो ना हो वहीं मोबाइल गिरा होगा। वो जगह तकरीबन 35 किलोमीटर पीछे थी। अलबेली ठंडक में हमारा सफर पीछे की तरफ चला। मैंने कहा, ठेले वाला तो चलायमान प्राणी होता है, जरूरी नहीं कि उस जगह पर खड़ा मिले, जाने कहाँ चला गया हो। विमल ने कहा, आम तौर पर ठेले वाले अपना ठिया नहीं बदलते, वे रोज एक जगह ही जमे रहते हैं। हम पहुंचे, ठेले वाला वहीं खड़ा था। उसकी बिक्री अच्छी हुई थी, अमरूदों का ढेर काफी कम हो गया था। विवेक ने उतर कर पूछताछ की। अमरूद वाले ने गर्दन हिला दी। उसने कोई मोबाइल वोबाइल नहीं देखा। वो क्या जाने कैसा था उनका मोबाइल। पास बैठे मौसी से पूछा। कि भाई अभी यहाँ एक मोबाइल फोन गिरा था, कहीं तुमने देखा हो तो बता दो, मोची बिगड़ गया। सवेरे से बैठे मक्खी मार रहे हैं, एकव ग्राहक नहीं फटकव, हम का जानी तुम्हार मोबाइल। निराश वहां से हमारी सवारी अब आगे की दिशा में बढ़ी। बरेली पहुंचने में भी देरी हो रही थी। हम लोग विवेक के फोन नंबर पर फोन मिलाते रहे। एक बार मेरे फोन मिलाने पर यकायक किसी ने फोन में डांट लगाई, कौन है आप लोग, मार फनवा कर करके जान परेशान कर दिए, क्या काम है? मैंने घबरा कर फोन विवेक को पकड़ाया। विवेक ने उसे घटना बताई। उस आदमी ने लापरवाही से कहा, सड़क पर लावारिस पड़ा था, हम सोचे जाने कौन का है, नहीं मिला कोई तो इसे पुलिस चौकी में जमा कर देंगे। विवेक ने कहा, ऐसा गजब मत कीजिए, हम लेने आ रहे हैं, आप कहाँ मिलेंगे बड़े भाई? उस आदमी ने कहा, वो मुरादाबाद मोड़ पर बस के इंतजार में खड़ा है, वो सिर्फ 10 मिनट रुकेगा, अगर बस आ गई तो फौरन चला जाएगा। अब हमारी टैक्सी फिर वापस जाने को मुड़ी। मेरे अंदर आगे पीछे जाने का धीरज टूट रहा था, ठंड के मारे बुरा हाल था। वहां एक चाय का खोखा था, मैं वहीं उतर गई। मैं यहां बैठकर इंतजार करूंगी, आप लोग जाएं। उपेंद्र कुमार भी वहां उतर गए। हमने चाय का ऑर्डर दिया। आशंका के अनुरूप चाय बहुत रद्दी थी, उसमें चीनी के सिवाय कुछ और तत्व न था, ऊपर से वहां मक्खियां भी मजे की थीं। उपेंद्र कुमार उठकर बाहर धूप में खड़े हो गए। मैं जब उठने लगी, न जाने कैसे एक मक्खी फड़फड़ाती हुई आई और मेरी नाक में घुस गई। उफ, वो बेचैनी और घबराहट शब्दों में बताई नहीं जा सकती। मुझे लगा वो मेरे ब्रेन में पहुंच जाएगी। खोखे के दरवाजे पर लगी पानी की टंकी से खूब नाक आंख धोए, कोई फायदा नहीं। एक बार जोर से नाक साफ की, बहुत जोर की छींक आई और मक्खी फड़फड़ाती हुई बाहर निकल आई। मेरी जान में जान आई, लेकिन वो सेंसेशन नाक में उसकी फड़फड़ देर तक महसूस होकर मुझे बेचैन करती रही। काफी देर बाद हमारी टैक्सी अपनी दिशा में आती दिखी। इस बार टैक्सी में विवेक गौतम प्रसन्न चित्त बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर मोबाइल अभियान की सफलता का संतोष था। थोड़े ही दिनों बाद कोरोना काल आ गया। कहीं भी जाना एक सपना हो गया। अपने ही घर में ऐसे बच बच कर रहने लगे जैसे अपने ही सजीव निर्जीव हर स्पर्श में संक्रमण है। मकान बंद, दुकानें बंद, डॉक्टर के दवाखाने बंद। किसी विषम प्रसंग में दिल्ली बरेली मार्ग पर एक दिन निकलना हुआ। चौड़ी सड़क पहचानी हुई लगी। वहां न अमरूद का ठेला था न मोची, सड़क पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा था। चौराहे के सामने आखिरी लिबास का नामपट एक तरफ से झूल कर टेढ़ा लटक रहा था। दुकान बंद थी। बंद दुकान के आगे एक 10-12 साल का लड़का कुछ जालीदार सफेद काली टोपियां सजा कर बैठा हुआ था। क्यों, ये दुकान बंद हो गई क्या? मैंने पूछा। लड़का कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ देखता रहा। मैंने सवाल दोहराया, यहां दुकान थी ना आखिरी लिबास, क्या हुआ उसका? लड़के ने मायूस आवाज में कहा, कोरोना में बहुत मौतें हुई, सारा माल बिक गया। फिर मैंने सवालिया निगाह से उसे देखा, जाने कहां से अब्बा जान को कोरोना लग गया, अब्बू का इंतकाल हो गया, दुकान बंद हो गई, दुकान का आखिरी कफन उन्हीं के काम आया। तुम्हारे अब्बा जान थे? जी, उसने आंखें झुका ली, शायद पनीली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने अफसोस जताया। लड़का खामोश रहा। उसने पास पड़ा एक फटा कपड़ा हाथ में थामा। अब वो टोपियों के ऊपर से धूल हटा रहा था। गाथा में आप सुन रहे थे ममता कालिया की कहानी आखिरी लिबास। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।